ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने किया सुदूर पश्चिम प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्यों के साथ विचार विमर्श। सभामुख और उपसभामुख के निर्वाचन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए संघीय संसद सचिवालय द्वारा कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। वैदेशिक रोजगार पर जाने वाले कामगार अब किसी भी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकेंगे। बीमा सेवा न देने वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई की स्वास्थ्य बीमा बोर्ड की चेतावनी। और भारत में कल से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू करने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुदूर पश्चिम प्रदेश के सांसदों के साथ विकास निर्माण तथा उस क्षेत्र में दिखाई दे रही समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा की है। प्रधानमंत्री शाह ने आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में सुदूर पश्चिम से निर्वाचित हुए विभिन्न दल के सांसदों से विचार विमर्श किया। ये जानकारी प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय ने दी। चर्चा में सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करने की बात प्रधानमंत्री शाह ने कही। संघीय संसद सचिवालय ने संसद अधिवेशन आह्वान होने के बाद उसकी तैयारी के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे सभी दलों को कल दोपहर 1 बजे सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ये जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एक राम गिरी ने दी। बता दें कि इसी चैत 16 गति मंत्रिपरिषद की सिफारिश के मुताबिक राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा चैत 19 गति दोपहर 2 बजे के लिए संसद अधिवेशन बुलाया जा चुका है। बैठक द्वारा सभामुख और उपसभामुख की चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ज्ञात हो कि प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दलों की सहभागिता है। गृहमंत्री सुधंग गुरुंग के साथ सशस्त्र प्रहरी के उच्च अधिकारियों ने आज विचार विमर्श किया। गृहमंत्री गुरुंग ने सशस्त्र प्रहरी द्वारा अब तक किए गए कामों और सुधार योग्य क्षेत्रों के विषय में विचार प्रस्तुत किए। ये जानकारी गृहमंत्री के निजी सचिवालय ने दी। विचार विमर्श में गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी के IGP राजू अर्याल सहित उच्च अधिकारी उपस्थित थे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने वैदेशिक रोजगार पर जाने वाले कामगारों को सरकारी मान्यता प्राप्त किसी भी अस्पताल से स्वास्थ्य परीक्षण कराने की व्यवस्था की है। श्रम मंत्री दीपक कुमार साह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिस्तरीय बैठक ने वैदेशिक रोजगार पर जाने वाले कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए इच्छुक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए सूचीकरण खोलने तथा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण नवीकरण और अनुगमन संबंधी कार्यविधि 2072 के अनुसार आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय भी किया है। नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ के महासचिव कृष्ण प्रसाद बजगाई ने कहा कि सरकार द्वारा कार्यविधि में मौजूद प्रावधान को लागू करना सकारात्मक है, लेकिन निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों और व्यवसायियों का समुचित व्यवस्थापन भी जरूरी है। श्रम मंत्रालय के मापदंड के अनुसार वर्तमान में 194 स्वास्थ्य संस्थानों ने नवीकरण किया है। अब तक इन्हीं संस्थानों के माध्यम से वैदेशिक रोजगार पर जाने वाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता रहा है। विभिन्न अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा स्वास्थ्य बीमा सेवा देने में आनाकानी करने तथा मरीजों को आवश्यक सुविधाएं न देने की घटनाएं सामने आने के बाद स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने के दौरान कुछ सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा बीमित सेवाग्राहियों को परेशान करने तथा सेवा न देने की शिकायत मिलने पर बोर्ड ने सभी से सहज रूप से उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा बीमा सेवा प्राप्त करने के लिए अग्रिम समय लेने की बाध्यता, बीमित व्यक्तियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा आवश्यक सेवाएं और दवाएं उपलब्ध न कराने के मामले पर बोर्ड ने ध्यान आकर्षित किया है। निगरानी के दौरान यदि किसी सेवा प्रदाता स्वास्थ्य संस्था द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किए जाने पर प्रमाण मिलता है तो स्वास्थ्य बीमा आयन 2074 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी बोर्ड के कार्यकारी निदेशक कृष्ण प्रसाद पौडेल ने दी। नेकपा एमाले ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक की रिहाई की मांग करते हुए अतिरिक्त आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की है। ललितपुर के च्यासल स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज हुई सचिवालय बैठक में अध्यक्ष ओली और कांग्रेस नेता लेखक की रिहाई की मांग को लेकर आगे आंदोलन के कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने दी। महासचिव पोखरेल के अनुसार बैठक ने चैत 25 तक जिला स्तर पर विशाल कार्यकर्ता बैठक, चैत 28 को सभी पालिका स्तर पर विरोध प्रदर्शन और आगामी वैशाख 3 को सभी वार्ड स्तर पर सभा तथा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव की समीक्षा तथा पार्टी की आगामी कार्य दिशा पर चर्चा के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। महामंत्री प्रदीप पौडेल ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर केंद्रीय कार्य समिति के निर्णय अनुसार चर्चा कार्यक्रम संचालन करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। विज्ञप्ति में उल्लेख है कि सातों प्रदेशों के 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के साथ प्रत्यक्ष चर्चा करते हुए समग्र चुनाव परिणाम, अनुभव और पार्टी की आगे की रणनीति पर समीक्षा की जाएगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय औषधि प्रयोगशाला ने अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण ISO की मान्यता प्राप्त की है। स्थापना के 60 वर्ष बाद नेपाल की एकमात्र सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला IOS एक्रेडिटेशन सर्टिफाइड बनी है। राष्ट्रीय औषधि प्रयोगशाला के निर्देशक भरत भट्टराय ने बताया कि अब ये प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली सरकारी औषधि प्रयोगशाला में परिवर्तित हो गई है और इससे दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होगी। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल के 76वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर रेडियो नेपाल ने आज शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया। शास्त्रीय संगीत सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा कि रेडियो नेपाल ने कला और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रवर्धन में लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष कार्यकारी डॉ विष्ट ने ये भी बताया कि आज आयोजित शास्त्रीय संगीत सम्मेलन की सभी प्रस्तुतियों को अभिलेख में सुरक्षित रखा जाएगा और शास्त्रीय संगीत को देश विदेश के श्रोताओं तक विभिन्न माध्यमों से प्रसारित करने की योजना है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु राम न्यौपाने ने कहा कि ये सम्मेलन संगीत क्षेत्र के विकास में सहायक होगा, इसलिए भविष्य में भी गीत संगीत के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाना आवश्यक है। सम्मेलन में विभिन्न 6 समूहों तथा वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में जनगणना का काम 1 अप्रैल यानी कल से शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रार जनरल और सेसम कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने के लिए तैयार है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। इसमें 30 लाख एन्यूमेटर सुपरवाइजर और अधिकारी शामिल होंगे। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ने किया सुदूरपश्चिम प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्यों के साथ विचार विमर्श। सभामुख और उपसभामुख के निर्वाचन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए संघीय संसद सचिवालय द्वारा कल बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। वैदेशिक रोजगार पर जाने वाले कामगार अब किसी भी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकेंगे। बीमा सेवा न देने वाले स्वास्थ्य संस्थानों पर कार्रवाई की स्वास्थ्य बीमा बोर्ड की चेतावनी। और भारत में कल से दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान शुरू करने की तैयारी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।